एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो हमें हर पल घेरे रहती है। हाँ, ब्रांडिंग की दुनिया। हम सब ब्रांड्स खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में बात भी करते हैं, पर क्या हम वाकई समझते हैं कि ये पर्दे के पीछे काम कैसे करते हैं?
ये सवाल तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्सर हम इसे बस मार्केटिंग या कोई फ्लैशी विज्ञापन समझ लेते हैं, पर आज हम इसे एक अलग नजरिए से देखेंगे, रॉबर्ट एम ग्रांट की सोच के जरिए, जो बिजनेस स्ट्रेटजी के एक बहुत बड़े नाम हैं।
हाँ, और हमारे पास उनके विचारों पर आधारित दो अहम स्रोत हैं, ग्रांट्स कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी ऑफ ब्रांडिंग और ब्रांडिंग अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के सारांश। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये ब्रांड सिर्फ लोगो या नाम से बढ़कर क्यों है।
बिल्कुल, ग्रांट हमें ये समझने में मदद करते हैं कि ये चीज, ये ब्रांडिंग कैसे एक ताकतवर रणनीतिक हथियार बन गई है। तो चलिए इस दिलचस्प और अहम विषय की परतें खोलते हैं, देखते हैं ग्रांट का नजरिया क्या कहता है।
तो सबसे पहले रॉबर्ट ग्रांट के बारे में थोड़ी बात हो जाए। जैसा आपने कहा, वो कोई टिपिकल मार्केटिंग गुरु तो है नहीं, तो उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या चीज उनके नजरिए को इतना अलग बनाती है?
हाँ, यही सबसे मजेदार बात है। ग्रांट असल में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, मतलब बिजनेस रणनीति के विशेषज्ञ। उन्होंने दुनिया के कुछ टॉप बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया है, जॉर्जटाउन, लंदन बिजनेस स्कूल, मिलान की बोकोनी यूनिवर्सिटी। उनकी खासियत है बिजनेस स्ट्रैटेजी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
कंपैरेटिव एडवांटेज मतलब कंपनियां बाजार में दूसरों से आगे कैसे निकले, राइट?
एग्जैक्टली, कैसे वो बढ़त बनाए रखें। उनकी बहुत मशहूर किताब है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी एनालिसिस, जो दुनिया भर में MBA स्टूडेंट्स पढ़ते हैं।
अच्छा, तो फिर उनका ब्रांडिंग पे लिखना थोड़ा हटके लगता है। स्ट्रैटेजी वाला बंदा ब्रांडिंग पे क्यों लिख रहा है?
हटके तो है, और यही उनकी USP है कह सकते हैं। वो ब्रांडिंग को सिर्फ क्रिएटिविटी या विज्ञापन की नज़र से नहीं देखते, वो ऐसे एक रणनीतिकार की नज़र से, एक अर्थशास्त्री की नज़र से देखते हैं। उनका मेन फोकस इस बात पर है कि ब्रांड्स कैसे टिकाऊ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाते हैं,
मतलब बिजनेस को असली फायदा कैसे पहुंचाते हैं।
हाँ, कैसे वो कंपनियों के लिए असली आर्थिक मूल्य, मतलब पैसा कमा कर देते हैं। वो थियरी और प्रैक्टिकल बिजनेस की दुनिया के बीच एक पुल बनाते हैं।
तो अगर ग्रांट की इन किताबों का सार निकालना हो, तो वो ब्रांडिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? उनके हिसाब से ये है क्या असल में?
देखिए, उनके लिए ब्रांडिंग सिर्फ वो लोगो डिजाइन करना या कोई अच्छा सा नाम सोच लेना नहीं है। वो कहते हैं कि ये अब एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, मतलब एक सोचा समझा रणनीतिक टूल बन गया है।
एक टूल? कैसा टूल?
ये सिर्फ दिखने वाली चीज नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है।
मतलब ये सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं हुआ, ये तो पूरे बिजनेस की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, और इसका असर समाज पर भी। ये तो काफी बड़ी बात कह दी आपने।
बिल्कुल, ग्रांट का मुख्य तर्क यही है कि सफल ब्रांडिंग का मतलब है कंपनियों और ग्राहकों के बीच गहरे टिकाऊ रिश्ते बनाना और उन्हें संभालना, मैनेज करना।
और ये होता कैसे है, रिश्ते कैसे बनते हैं?
ये होता है ब्रांड आइडेंटिटी, यानी कंपनी क्या दिखाना चाहती है, ब्रांड इमेज यानी ग्राहक क्या देखते हैं, और ब्रांड इक्विटी मतलब ब्रांड की कीमत। इन सबको सोच समझ कर, सिस्टम से डेवलप करके। ये सिर्फ बेचने का नहीं, रिश्ते बनाने का खेल है।
और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये रिश्ते जो दिखते नहीं, अमूर्त हैं, वो कंपनियों के लिए ठोस फायदा, मतलब पैसा कैसे पैदा करते हैं?
हाँ, ग्रांट ऐसी पहेली को सुलझाते हैं। वो बताते हैं कि ब्रांड्स ग्राहकों के लिए चीजें आसान बनाते हैं, वो जानकारी का शॉर्टकट देते हैं, क्वालिटी का भरोसा दिलाते हैं, अनिश्चितता कम करते हैं। सोचिए, आप दुकान में जाते हैं, हजारों चीजें हैं, एक जाना पहचाना ब्रांड देखकर सुकून मिलता है ना?
हाँ बिल्कुल, लगता है कि चलो ये तो ट्राई किया हुआ है या सुना हुआ है।
एग्जैक्टली, और कंपनियों के लिए, उनके लिए भी फायदे हैं। मजबूत ब्रांड उन्हें ज्यादा दाम वसूलने की ताकत देते हैं,
प्रीमियम प्राइसिंग जिसे कहते हैं।
हाँ, ग्राहक वफादार बनते हैं, बार बार खरीदते हैं, और नए कॉम्पिटिटर्स के लिए मार्केट में घुसना मुश्किल हो जाता है। ये किताबें ब्रांडिंग के पूरे सफर को देखती हैं, ये कैसे शुरू हुई, आज क्या है, और इसे मैनेज कैसे करें।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ग्रांट ब्रांड को परिभाषित कैसे करते हैं? अगर ये सिर्फ लोगो या नाम नहीं है, तो फिर क्या है? ये कहाँ रहता है, कंपनी की फाइलों में या कहीं और?
बहुत अच्छा सवाल है ये। ग्रांट कहते हैं कि ब्रांड असल में कंपनी की चीज कम, ग्राहक के दिमाग की चीज ज्यादा है। उनके लिए ब्रांड का मतलब है अर्थों, जुड़ावों, यादों और उम्मीदों का एक कॉम्प्लेक्स बंडल, जो ग्राहक के मन में होता है।
मन में?
हाँ, ये एक वादा है जो कंपनी करती है और उस वादे पर बनी हुई इज्जत मतलब रेप्यूटेशन है।
यानी ब्रांड वो है जो ग्राहक सोचता है, ना कि सिर्फ वो जो कंपनी कहती है।
बिल्कुल, इसलिए ग्रांड ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज के फर्क पर बहुत जोर देते हैं। आइडेंटिटी है कंपनी की नीयत, वो क्या बनना चाहती है,
उसका इरादा क्या है,
हाँ, उसके मूल्य क्या हैं, पर्सनालिटी कैसी हो। लेकिन इमेज है हकीकत, ग्राहक असल में उसे कैसे देखते हैं, क्या महसूस करते हैं। आज के जमाने में सोचिए, कोई कंपनी खुद को बहुत कस्टमर फ्रेंडली बताना चाहे, ये हुई आइडेंटिटी। लेकिन ऑनलाइन रिव्यूज देखो तो पता चले सर्विस बहुत खराब है, ये हुई इमेज।
हाँ, ये तो होता है।
तो सफल ब्रांडिंग का काम है इस गैप को कम से कम रखना।
ठीक है, तो ब्रांड ग्राहक के दिमाग में है, लेकिन फिर सवाल वही, ये जो अमूर्त सी चीज है, ये कंपनियों और ग्राहकों के लिए ठोस मूल्य यानी वैल्यू कैसे पैदा करती है? क्या ये सिर्फ ज्यादा दाम लेने का एक चालाक तरीका है?
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ग्राहकों के लिए सोचिए, ब्रांड्स क्या हैं? इन्फॉर्मेशन शॉर्टकट। सुपरमार्केट में इतनी चीजें हैं, हर एक को रिसर्च तो नहीं कर सकते ना?
नामुमकिन है।
तो एक जाना माना ब्रांड आपको फौरन भरोसा देता है, फैसला लेना आसान बनाता है, गलत चीज खरीदने का रिस्क कम लगता है, और कई बार तो ब्रांड हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। कोई खास फोन यूज करना या कोई खास गाड़ी चलाना एक तरह का स्टेटस सिंबल बन जाता है।
हाँ, ये बात तो है। और कंपनियों के लिए, उनके लिए क्या फायदे हैं?
कंपनियों के लिए फायदे बहुत ठोस हैं। जैसा कहा, मजबूत ब्रांड उन्हें ज्यादा कीमत वसूलने की इजाजत देता है, प्रीमियम प्राइसिंग, ग्राहक लॉयल बनते हैं, बार बार आते हैं,
कस्टमर लॉयल्टी,
और दूसरों के लिए उस ब्रांड की बराबरी करना, कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। इसे कहते हैं कॉम्पेटिटिव बैरियर। इन सब का जो मिलाजुला असर है वही है ब्रांड इक्विटी, मतलब ब्रांड की अपनी एक फाइनेंशियल वैल्यू। ये बैलेंस शीट पर भी दिख सकती है। ये हवा हवाई बात नहीं, असली दौलत है।
तो अगर ये ग्राहक के दिमाग में वैल्यू बनाता है, तो कंपनियां जानबूझकर इसे कैसे गढ़ती हैं? यहीं पर शायद आइडेंटिटी और पोजिशनिंग का रोल आता है।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ब्रांड आइडेंटिटी तो हुई कंपनी की अंदरूनी स्ट्रेटेजी। हमारा ब्रांड क्या है, उसका सार क्या है, पर्सनालिटी कैसी है, मूल्य क्या है, ये सब तय करना।
ये तो अंदर की बात हो गई।
हाँ, लेकिन सिर्फ तय करना काफी नहीं, फिर आता है ब्रांड पोजिशनिंग, यानी इस आइडेंटिटी को मार्केट में, ग्राहकों के दिमाग में, अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में एक खास, साफ और आकर्षक जगह पर बिठाना।
और इसके लिए क्या चाहिए होता है, कैसे करते हैं ये?
इसके लिए चाहिए एक क्लियर वैल्यू प्रपोजिशन, मतलब आप ग्राहक को ऐसा क्या अनोखा फायदा दे रहे हैं जो दूसरे नहीं दे रहे। याद है एविस्कार रेंटल का पुराना नारा, वी ट्राई हार्ड अप?
हाँ हाँ, सुना है।
वो मार्केट में नंबर दो थे, लेकिन इस नारे से उन्होंने ग्राहकों के दिमाग में एक खास जगह बनाई कि ये लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं। ये पोजिशनिंग का एक क्लासिक उदाहरण है।
लेकिन बड़ी कंपनियां तो अक्सर एक साथ कई ब्रांड्स चलाती हैं, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उनके पास एरियल भी है, टाइड भी, पैम्पर्स भी, या हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख लीजिए, इतनी सारी चीजें। ग्रांट इस उलझन को संभालने के बारे में क्या कहते हैं, ग्राहक कंफ्यूज नहीं होते?
इसे कहते हैं ब्रांड आर्किटेक्चर, मतलब कंपनी अपने अलग अलग ब्रांड्स के रिश्ते को कैसे ऑर्गेनाइज करती है। ग्रांट दो मेन मॉडल्स बताते हैं। पहला है ब्रांडेड हाउस।
ब्रांडेड हाउस,
हाँ, जैसे गूगल या वर्जिन, यहाँ मेन कंपनी का नाम यानी मास्टर ब्रांड ही सबसे आगे रहता है। गूगल मैप्स, गूगल डॉक्स, सब गूगल के नाम से। दूसरा मॉडल है हाउस ऑफ ब्रांड्स।
अच्छा, मतलब ब्रांड्स का घर।
हाँ, जैसे पीएनजी या यूनिलीवर, यहाँ हर ब्रांड की अपनी अलग पहचान होती है, टाइड, पैम्पर्स, जिलेट, और अक्सर ग्राहकों को पता भी नहीं होता कि ये सब एक ही पेरेंट कंपनी के हैं, पेरेंट कंपनी पीछे रहती है।
तो कौन सा मॉडल बेहतर है?
देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये कंपनी के लक्ष्यों पर, मार्केट की जरूरतों पर, और वो कितना रिस्क लेना चाहते हैं, इस पर निर्भर करता है। ब्रांडेड हाउस में एक ब्रांड फेल हुआ तो असर मास्टर ब्रांड पर भी आ सकता है। हाउस ऑफ ब्रांड्स में हर ब्रांड अपनी किस्मत का मालिक होता है, रिस्क बढ़ जाता है।
और आज का जमाना तो डिजिटल है, सब कुछ ऑनलाइन है, सोशल मीडिया पर है, इसने तो ब्रांडिंग का पूरा खेल ही बदल दिया होगा। ग्रांट इस बारे में क्या कहते हैं?
बिल्कुल, ग्रांट मानते हैं कि डिजिटल क्रांति में पासा पलट दिया है। पहले कंपनियां टीवी, अखबार से अपनी बात कहती थी, एक तरफा बात होती थी। इसे ग्रांट कहते हैं ब्रांड मोनोलॉग।
हाँ, बस कंपनी बोलती थी, हम सुनते थे।
अब सोशल मीडिया पर ग्राहक भी बराबर बोल रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो अब ये दो तरफा बातचीत है, ब्रांड डायलॉग। शक्ति अब कंपनियों के हाथ से निकलकर ग्राहकों के हाथ में ज्यादा आ गई है।
ओह, इसका मतलब है कि कंपनियां अब अपनी कहानी को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकती?
नहीं कर सकती। अब ब्रांड वो नहीं रह गया जो सिर्फ कंपनी कहती है। ब्रांड वो ज्यादा बन गया है जो ग्राहक कहते हैं, जो वो महसूस करते हैं, जो वो ऑनलाइन शेयर करते हैं। इसलिए अब ब्रांड्स के लिए ऑथेंटिक होना, मतलब सच्चा होना, ट्रांसपेरेंट होना, पारदर्शी होना और ग्राहकों की बात सुनकर जवाब देना, मतलब रिस्पॉन्सिव होना, पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी पड़ेगा।
एग्जैक्टली।
हम अक्सर ब्रांडिंग को साबुन, तेल, कार जैसी चीजों से जोड़ते हैं। क्या ये सिद्धांत सिर्फ प्रोडक्ट्स पर ही लागू होते हैं या कहीं और भी? जैसे क्या कोई शहर या कोई नेता भी ब्रांड हो सकता है?
ग्रांट कहते हैं कि ब्रांडिंग के सिद्धांत यूनिवर्सल हैं, हर जगह लागू होते हैं। सिर्फ उत्पाद ही नहीं बल्कि सेवाएं, जगहें, लोग, यहाँ तक कि आइडियाज भी ब्रांड बन सकते हैं।
अच्छा, उदाहरण देंगे?
हाँ, जैसे शहरों और देशों की ब्रांडिंग होती है, प्लेस ब्रांडिंग कहते हैं इसे। सोचिए इनक्रेडिबल इंडिया या आई लव NY जैसे कैंपेन। इन्होंने उन जगहों की एक इमेज बनाई ना?
हाँ बिल्कुल।
इसी तरह सेलिब्रिटी और नेता भी अपनी पर्सन ब्रांडिंग करते हैं। उनकी एक खास इमेज होती है जिसे वो मैनेज करते हैं। माइकल जॉर्डन का जॉर्डन ब्रांड देख लीजिए, कपड़ों और जूतों की दुनिया में एक मिसाल है। यहाँ तक कि नॉन प्रॉफिट संगठन भी ब्रांडिंग का इस्तेमाल करते हैं, कॉज ब्रांडिंग, जैसे WWF का वो पांडा लोगो पूरी दुनिया में पर्यावरण बचाने का सिंबल बन गया है।
वाह, मतलब सिद्धांत वही है।
हाँ, सिद्धांत वही है, एक पहचान बनाना, भरोसा कायम करना और लोगों से जुड़ना।
लेकिन चलिए ईमानदारी से बात करते हैं, ब्रांडिंग पर अक्सर आरोप भी लगते हैं कि ये लोगों को फालतू खर्चे के लिए उकसाता है, भावनाओं से खेलता है, छोटे बिजनेस को दबाता है। क्या ग्रांट इन आलोचनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं या मानते हैं कि इनमें कुछ सच्चाई है?
नहीं, वो इन्हें नजरअंदाज नहीं करते। ग्रांट एक बैलेंस नजरिया रखते हैं। वो मानते हैं कि ये आलोचनाएं काफी हद तक सही हैं। ब्रांडिंग का इस्तेमाल लोगों को प्रभावित करने, यहाँ तक कि मैनिपुलेट करने के लिए भी किया जा सकता है।
तो फिर?
लेकिन वो कहते हैं कि ये आलोचनाएं असल में ब्रांडिंग की जबरदस्त ताकत को ही दिखाती हैं, क्योंकि ये इतना शक्तिशाली टूल है, इसीलिए इसे जिम्मेदारी से समझना और इस्तेमाल करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है, ये बात ब्रांडिंग पर भी लागू होती है।
ये पहला तो यही है कि ब्रांड सिर्फ मार्केटिंग की रंगीन दुनिया का हिस्सा नहीं है, ये कंपनी की एक ठोस रणनीतिक संपत्ति है।
स्ट्रेटेजिक एसेट।
बिल्कुल सही।
और ये सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि शायद सबसे टिकाऊ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि आप किसी की फैक्ट्री कॉपी कर सकते हैं, प्रोडक्ट का डिजाइन कॉपी कर सकते हैं, लेकिन किसी ब्रांड की सालों में बनी प्रतिष्ठा और ग्राहकों के मन में उसकी जगह, उसको कॉपी करना लगभग नामुमकिन है।
हाँ ये तो है।
इसीलिए मजबूत ब्रांड वाली कंपनियां लंबे समय तक बाजार में टिकी रहती हैं और बेहतर परफॉर्म करती हैं। भारत में ही देख लीजिए, टाटा समूह या अमूल जैसे ब्रांड दशकों से ग्राहकों का भरोसा जीते हुए हैं। ये सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं, उनकी ब्रांड इक्विटी की वजह से।
दूसरा बड़ा आइडिया मुझे ब्रांड के साथ हमारे मनोवैज्ञानिक रिश्ते, साइकोलॉजी ऑफ ब्रांड रिलेशनशिप्स का लगा। ऐसा लगता है जैसे ब्रांड सिर्फ चीजें नहीं बल्कि हमारे जीवन के साथी जैसे बन जाते हैं, हम उनसे इमोशनली जुड़ जाते हैं।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ग्रांट बताते हैं कि लोग ब्रांड्स के साथ वैसे ही रिश्ते बना सकते हैं जैसे इंसानों के साथ। ये हमारे मनोविज्ञान पर आधारित है। हम उन चीज़ों से जुड़ते हैं जो हमारी पहचान, हमारे मूल्यों या हमारी आकांक्षाओं से मेल खाती हैं।
जैसे
भारत में त्योहारों को ही देख लीजिए, दिवाली पर किसी खास मिठाई के ब्रांड का इस्तेमाल या शादी के लिए किसी खास कपड़े के ब्रांड का इस्तेमाल, ये सिर्फ खरीदारी नहीं है, वो हमारी परंपरा, हमारी भावनाओं का हिस्सा बन जाता है।
सही कहा। तीसरा, ये बदलाव की अब फोकस उत्पाद से अनुभव तक, एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोडक्ट टू एक्सपीरियंस चला गया है। लोग सिर्फ चीज नहीं खरीद रहे हैं बल्कि उसे पाने और इस्तेमाल करने का पूरा अनुभव खरीद रहे हैं।
एकदम सही। आप एप्पल का फोन सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी के लिए नहीं खरीदते, उसके डिजाइन, उसके इकोसिस्टम और उससे जुड़े स्टेटस सिंबल के लिए भी खरीदते हैं। अमेज़न से आप सिर्फ सामान नहीं मंगाते, आप भरोसे और सुविधा का अनुभव खरीदते हैं। भारत में भी देखिए, अच्छे रेस्टोरेंट या होटल सिर्फ खाना या कमरा नहीं बेचते, वो एक यादगार अनुभव देने की कोशिश करते हैं। रिटेल में भी यही हो रहा है, ग्राहक अब पूरी जर्नी का अनुभव चाहता है।
और चौथा, जिसका जिक्र पहले भी हुआ, ब्रांडिंग का डिजिटल कायापलट। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्रांडिंग, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने तो सब कुछ हिला के रख दिया है।
ग्रांट इस पर बहुत जोर देते हैं। जैसा हमने कहा, अब कंट्रोल ग्राहकों के हाथ में ज्यादा है, इसलिए ब्रांड्स को अब पहले से कहीं ज्यादा सच्चा, खुला और जवाबदेह होना पड़ेगा। उन्हें सिर्फ अपनी कहानी सुनानी नहीं, ग्राहकों की कहानी सुननी भी पड़ेगी।
और इसका एक अच्छा पहलू भी है शायद।
हाँ, दिलचस्प बात यह है कि भारत में हम देख रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे बिजनेस, स्थानीय कारीगर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी डिजिटल मंच का इस्तेमाल करके बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं। इससे लगता है कि ब्रांड बनाना अब कुछ हद तक डेमोक्रेटाइज्ड हो गया है, सबके लिए मौका है।
और आखिरी में एक और अहम बात उभर कर आ रही है, नैतिकता और स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल ब्रांडिंग का बढ़ता महत्व। क्या अब ब्रांड्स के लिए सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, अच्छा होना भी जरूरी हो गया है? यह सिर्फ कहने की बात है या वाकई फर्क पड़ रहा है?
ग्रांट के अनुसार ये अब सिर्फ कहने की बात या कोई पीआर स्टंट नहीं रहा, ये एक रणनीतिक जरूरत बन गया है। ग्राहक, खासकर युवा पीढ़ी, अब ब्रांड्स को सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स या सेवाओं के आधार पर नहीं आंकते,
वो और क्या देखते हैं?
वो ये भी देखते हैं कि कंपनी पर्यावरण के प्रति कितनी जिम्मेदार है, अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करती है, समाज के लिए क्या करती है। भारत में भी ये जागरूकता बढ़ रही है। अब ब्रांड्स को अपने सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में सोचना ही पड़ेगा, ये जरूरी हो गया है।
ग्रैंड के कुछ विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे उनका ये कहना कि ब्रांड मूल रूप से ग्राहकों से किया गया एक वादा है।
हाँ,
कितना सरल लगता है पर कितना गहरा है।
हाँ, ये ब्रांड को सीधे भरोसे से जोड़ देता है। वादा क्वालिटी का हो सकता है, सर्विस का, अनुभव का या किसी मूल्य का। जब कंपनी लगातार उस वादे को निभाती है तब विश्वास बनता है, और यही विश्वास ब्रांड इक्विटी की नींव है। वादा तोड़ना मतलब भरोसा तोड़ना, और फिर ब्रांड को बचाना मुश्किल हो जाता है।
एक और विचार जो थोड़ा अकादमिक सा लगता है लेकिन शायद बहुत महत्वपूर्ण है।
हाँ,
ब्रांड इक्विटी वो अंतर है जो ब्रांड के ज्ञान का उपभोक्ता की प्रतिक्रिया पर पड़ता है। इसे जरा और आसान शब्दों में समझाएं।
जरूर। मान लीजिए दो बिल्कुल एक जैसी दिखने और काम करने वाली चीजें, एक पर एक जाना माना ब्रांड नाम है, दूसरी अनब्रांडेड है। अब अगर लोग ब्रांडेड चीज के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं या उसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये जो अंतर आया उनकी प्रतिक्रिया में, वही ब्रांड इक्विटी है।
अच्छा, ये अंतर ही इक्विटी है।
हाँ, ये उस ब्रांड के बारे में उनके ज्ञान की वजह से आया है। उनकी जानकारी, उनकी भावनाएं, उनका अनुभव, ये दिखाता है कि ब्रांड का मूल्य सिर्फ उत्पाद की असलियत में नहीं, ग्राहक की सोच में है।
डिजिटल युग के बारे में उनका ये कहना भी आज की हकीकत बयान करता है। ब्रांड अब अपने संदेशों को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे केवल बातचीत को प्रभावित करने की उम्मीद कर सकते हैं। ये ब्रांड मैनेजर्स के लिए तो बड़ी चुनौती होगी।
चुनौती भी है और मौका भी। अब वो सिर्फ विज्ञापन बनाकर दुनिया को नहीं बता सकते कि हम महान हैं। उन्हें ग्राहकों की बातों को सुनना होगा, उनकी शिकायतों का जवाब देना होगा, उनकी तारीफों का शुक्रिया करना होगा, उन्हें बातचीत में शामिल होना होगा,
मतलब कन्वर्सेशन में हिस्सा लेना होगा।
हाँ, और उसे सकारात्मक दिशा देने की कोशिश करनी होगी। कंट्रोल भले ही चला गया हो, लेकिन सही तरीके से बातचीत को प्रभावित करने का मौका अभी भी है।
और जब ब्रांड्स दुनिया भर में फैलते हैं तो ग्रांट का सुझाव है, वैश्विक ब्रांड्स को विश्व स्तर पर सोचना चाहिए लेकिन स्थानीय रूप से कार्य करना चाहिए। अपने सार को बनाए रखते हुए अपनी अभिव्यक्ति को अनुकूलित करना चाहिए। ये ग्लोकल बनने वाली बात है।
हाँ, ये वही थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली वाला सिद्धांत है। एक ग्लोबल ब्रांड का जो मूल आइडिया या वादा सार है, वो हर जगह एक जैसा रहना चाहिए, लेकिन उसे पेश करने का तरीका स्थानीय संस्कृति, स्वाद और जरूरतों के हिसाब से ढालना पड़ता है। जैसे मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया में फास्ट फूड और सुविधा देता है, ये हुआ वैश्विक सोच, लेकिन भारत में मैक आलू टिक्की बर्गर बेचता है, ये हुआ स्थानीय कार्य।
हाँ, ये सही उदाहरण है।
इस संतुलन को साधना ही ग्लोबल ब्रांडिंग की सफलता है।
और आखिर में ये विचार कि सबसे मजबूत ब्रांड प्रामाणिक कहानियों पर बने होते हैं जो ग्राहकों के अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ गूंजते हैं। कहानी कहने की कला इतनी जरूरी क्यों है ब्रांडिंग में?
क्योंकि कहानियां हमें जोड़ती हैं। जब कोई ब्रांड सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं बेचता बल्कि एक ऐसी कहानी कहता है जो हमारे दिल को छू जाती है, हमारे मूल्यों से मिल खाती है या हमारे सपनों को आवाज देती है, तो एक गहरा रिश्ता बनता है। वो ब्रांड सिर्फ एक चीज नहीं रह जाता, हमारी कहानी का हिस्सा बन जाता है।
जैसे कोई एडवेंचर वाला ब्रांड।
हाँ, एडवेंचर गियर बेचने वाला ब्रांड अगर आजादी और खोज की कहानी कहता है, तो वो उन लोगों से जुड़ जाता है जो खुद को एडवेंचरस मानते हैं। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं, ये अर्थ का निर्माण है, मीनिंग क्रिएशन।
तो ये सब बातें सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इनका असल जिंदगी में क्या इस्तेमाल है? मान लीजिए कोई भारत में अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर रहा है, कोई उद्यमी है, उसके लिए ग्रांट के विचारों में क्या है?
उनके लिए तो ये खजाना है, पहली बात उन्हें समझना होगा कि वो सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेच रहे, वो एक ब्रांड बना रहे हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। दूसरी बात, उन्हें अपनी एक यूनिक पोजीशनिंग सोचनी होगी। मैं बाजार में दूसरों से अलग कैसे हूँ, मेरा वादा क्या है,
और डिजिटल जमाना है तो।
हाँ, तीसरी बात, आज के डिजिटल युग में कम बजट में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। सोशल मीडिया, एक अच्छी वेबसाइट, ग्राहकों से सीधा संवाद, ये सब शक्तिशाली टूल हैं। और सबसे जरूरी, अपनी सच्ची कहानी कहें। एक छोटे कैफे की कहानी, एक स्थानीय कारीगर की कला, यही उनका सबसे बड़ा ब्रांड एसेट हो सकता है।
और जो लोग मार्केटिंग या ब्रांडिंग के प्रोफेशन में हैं, उनके लिए क्या मुख्य सीख है?
उनके लिए सबक है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म सेल्स टारगेट या अगले विज्ञापन कैंपेन पर ही फोकस ना करें। असली खेल लॉन्ग टर्म ब्रांड इक्विटी बनाने का है। ब्रांड एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। उन्हें ये पक्का करना होगा कि कंपनी जो भी कर रही है, विज्ञापन, सोशल मीडिया, ग्राहक सेवा, प्रोडक्ट क्वालिटी, सब एक ही कहानी का है।
सब कुछ जुड़ा होना चाहिए।
हाँ, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ग्राहक के पूरे सफर, कस्टमर जर्नी को समझना और उसे बेहतर बनाना जरूरी है। और हाँ, ब्रांडिंग पर जो पैसा खर्च हो रहा है, उसका रिटर्न दिखाना भी जरूरी है, जिसके लिए सही मेट्रिक्स का इस्तेमाल करना होगा।
बड़ी कंपनियों के लीडर्स, CEO, बोर्ड मेंबर्स के लिए क्या संदेश है?
उनके लिए सबसे बड़ा संदेश है कि ब्रांड को सिर्फ मार्केटिंग विभाग का काम या खर्चा ना समझें। ये कंपनी की सबसे कीमती रणनीतिक संपत्तियों में से एक है। ब्रांड पोर्टफोलियो, मतलब कौन से ब्रांड रखें, कौन से बेचें, या ब्रांड एक्सटेंशन, यानी मौजूदा ब्रांड नाम से नए बाजार में जाना, ऐसे बड़े फैसले बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए।
टॉप लेवल की जिम्मेदारी है ये।
बिल्कुल। और अगर कंपनी ग्लोबल है तो अलग अलग संस्कृतियों को समझना और उसके हिसाब से रणनीति बनाना टॉप लीडरशिप की जिम्मेदारी है। ब्रांड की सेहत की जिम्मेदारी सिर्फ मार्केटिंग हेड की नहीं, CEO की भी है।
और हम जैसे आम उपभोक्ता, क्या हमारे लिए भी इसमें कुछ सीखने को है?
बिल्कुल है। सबसे पहले तो हम ज्यादा जागरूक हो सकते हैं कि ब्रांड्स हमारे फैसलों को कैसे और क्यों प्रभावित करते हैं। हम विज्ञापनों के पीछे की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, इमोशनल अपील्स को पहचान सकते हैं, और शायद ज्यादा सोच समझकर चुनाव कर सकते हैं।
और कंपनियों को जवाबदेह भी बना सकते हैं।
हाँ, हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा ब्रांड सिर्फ अच्छी बातें कर रहा है और कौन वाकई अच्छा काम कर रहा है, जैसे पर्यावरण या सामाजिक मुद्दों पर, और हम उन्हें उनके वादों के लिए जवाबदेह ठहरा सकते हैं। और हाँ, हम अपने करियर में भी पर्सनल ब्रांडिंग के सिद्धांतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी प्रतिष्ठा कैसे बनाएं, अपनी खासियतें कैसे सामने लाएं।
अगर मुझे एक चीज लेकर जानी हो इस चर्चा से, तो वो ये होगी कि ब्रांड सिर्फ एक लोगो या नाम नहीं, बल्कि विश्वास और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ये शायद किसी कंपनी की सबसे टिकाऊ लेकिन सबसे नाजुक संपत्ति भी है। इसे बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन ये पल भर में टूट सकता है, इसलिए इसे सहेजना और लगातार बेहतर बनाना बेहद जरूरी है।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि आज के डिजिटल दौर में ब्रांड बनाना अब एक तरफा घोषणा नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला संवाद है। प्रामाणिकता, पारदर्शिता और ग्राहकों की आवाज सुनना अब सिर्फ अच्छी बातें नहीं रही, ये बिजनेस चलाने की बुनियादी शर्तें बन गई हैं। कंपनियों को अब सिर्फ बोलना नहीं, सुनना सीखना होगा और ग्राहकों के साथ मिलकर अपने ब्रांड को विकसित करना होगा।
ये एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस तरह ब्रांड हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गए हैं, क्या हम जाने अनजाने अपनी पहचान को भी इन ब्रांड्स के जरिए परिभाषित करने लगे हैं? हम कौन हैं, ये बताने के लिए हम किन ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसका हमारी जिंदगी और हमारे समाज के लिए क्या मतलब है? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।